जरा कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही आधुनिक सुपर कंप्यूटर है, एकदम लेटेस्ट हार्डवेयर, प्रोसेसिंग पावर भी एकदम कमाल की है।
हाँ, आज के जमाने का बेस्ट सिस्टम।
बिल्कुल, लेकिन अगर हम उस आधुनिक मशीन में कोई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम डालने की कोशिश करें जो मतलब 2000 साल पहले बना था, तो क्या होगा?
जाहिर सी बात है, सिस्टम तुरंत क्रैश हो जाएगा।
हाँ, और स्क्रीन पर बस कुछ अजीबोगरीब कोड दिखेंगे जिनका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा।
ये एक बहुत ही सटीक तुलना है, और सच कहूं तो ठीक यही क्रैश तब होता है जब लोग इतिहास को आज के आधुनिक नजरिए से पढ़ने की कोशिश करते हैं।
सही बात है।
हम शब्द तो बिल्कुल सही पढ़ लेते हैं, लेकिन उन शब्दों के पीछे का जो असली मतलब है ना, जो उस समय की भावना है, वो पूरी तरह से खो जाती है।
और यही आज के हमारे इस गहन अध्ययन का मुख्य विषय है। हम आज डॉक्टर डेविड डी सिल्वा के एक बेहद दिलचस्प व्याख्यान पर यह विस्तृत चर्चा कर रहे हैं, जिसका विषय है नए नियम की सांस्कृतिक दुनिया, सम्मान और अपमान।
बहुत ही शानदार विषय है ये।
हाँ, और ये स्रोत सामग्री बहुत स्पष्ट रूप से दिखाती है कि 21वीं सदी की जो हमारी पश्चिमी सोच है ना, उसके साथ अगर हम 2000 साल पुराने ऐतिहासिक ग्रंथों को पढ़ेंगे तो वो कितना भ्रामक हो सकता है।
बिल्कुल,
मतलब आज की दुनिया व्यक्तिगत अधिकारों, व्यापारिक लेनदेन और कीटाणुओं वाली स्वच्छता के इर्द गिर्द घूमती है।
हाँ, लेकिन प्राचीन दुनिया की जमीनी हकीकत इससे बहुत अलग थी। पहली शताब्दी के भूमध्य सागरीय इलाके के जो लोग थे, वो दुनिया को एक ऐसे चश्मे से देखते थे जो आज हमारे लिए समझना थोड़ा मुश्किल है।
ऐसा क्यों?
क्योंकि उनके लिए व्यक्तिवाद नाम की कोई चीज ही नहीं थी। मतलब एक इंसान की अपनी कोई अलग पहचान नहीं थी, उसकी पहचान उसके परिवार, उसके कबीले और उसके एक समूह से होती थी।
अरे वाह, मतलब समूह ही सब कुछ था।
बिल्कुल, और अगर हम पवित्रता और अशुद्धता जैसे शब्दों की बात करें तो आज हम तुरंत हाथ धोने,
हाँ, कीटाणुओं और साफ सफाई के बारे में सोचने लगते हैं।
सही कहा, लेकिन उस प्राचीन दुनिया में इसका कीटाणुओं से कोई लेना देना नहीं था। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता था कि समाज के धार्मिक नियमों के हिसाब से कोई व्यक्ति ईश्वर के सामने जाने के योग्य है या नहीं।
तो इसका मतलब है कि अगर हम उस प्राचीन ऑपरेटिंग सिस्टम की कोडिंग को समझे बिना उन ऐतिहासिक ग्रंथों का अनुवाद करेंगे
तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा।
बिल्कुल ठीक है, तो आइए इसे समझते हैं। क्या स्रोत सामग्री में कोई ऐसा ठोस उदाहरण दिया गया है जहां हमारी आधुनिक सोच ने किसी प्राचीन शब्द का अर्थ पूरी तरह से बदल कर रख दिया हो?
हाँ हाँ, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है अनुग्रह के मुफ्त उपहार का विचार। मतलब आज के समय में मुफ्त शब्द का अर्थ बहुत सीधा है, लेकिन प्राचीन रोम और ग्रीस में इसका मतलब कुछ और ही था।
एक मिनट, मुफ्त का मतलब तो मुफ्ती होना चाहिए ना? आज के दौर में अगर कोई कंपनी या कोई व्यक्ति मुफ्त उपहार देता है तो हम तुरंत ये मान लेते हैं कि इसके साथ कोई छिपी हुई शर्त नहीं जुड़ी है।
हाँ, हम यही मानते हैं।
मतलब अगर मुझे इसके बदले कुछ चुकाना पड़े तो फिर वो मुफ्त कैसे हुआ? वो तो एक तरह का लेन देन हो गया।
और यहीं पर आधुनिक दिमाग प्राचीन इतिहास को समझने में मात खा जाता है। डॉक्टर डी सिल्वा रोमनों के ऐतिहासिक संदर्भ का हवाला देते हुए बताते हैं कि पॉल के समय में मुफ्त का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि आपको बदले में कुछ नहीं करना है।
अच्छा, तो फिर क्या मतलब था?
उस प्राचीन व्यवस्था में जब कोई अमीर या शक्तिशाली व्यक्ति किसी कमजोर को उपहार देता था तो वो बिना किसी बाहरी दबाव के देता था। उसके मुफ्त होने का बस इतना ही मतलब था कि देने वाले पर कोई जबरदस्ती नहीं थी। लेकिन
एक पैंच है।
हाँ, बहुत बड़ा पैंच है। जैसे ही वो उपहार स्वीकार किया जाता था, लेने वाले और देने वाले के बीच एक अदृश्य लेकिन बेहद मजबूत सामाजिक अनुबंध बन जाता था। लेने वाले पर आभार जताने और भविष्य में उस व्यक्ति के प्रति वफादार रहने का एक गहरा दायित्व आ जाता था।
ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। मैं तो सोच रही थी कि उपहार का मतलब बस उपहार होता है।
प्राचीन दुनिया में ऐसा नहीं था।
तो अगर मैं इसे सही से समझ रही हूँ तो इसका मतलब है कि आज की संस्कृति इंसान को हर तरह के दायित्व से मुक्त देखना चाहती है, जबकि प्राचीन संस्कृति हर एक चीज को आपसी दायित्व और रिश्तों की एक लंबी जंजीर से जोड़ती थी।
एकदम सही।
मतलब अगर किसी ने कुछ लिया है तो वो उस रिश्ते के कर्ज में बंध गया है, कोई कानूनी कर्ज नहीं बल्कि एक सामाजिक कर्ज।
बिल्कुल, और इस दायित्व वाले समाज की कल्पना करना आज हमारे लिए इसलिए मुश्किल है क्योंकि हम उस इंजन को नहीं समझ पा रहे हैं जो इस पूरी व्यवस्था को चलाता था। अगर कानूनी कागजात नहीं थे तो लोग इन दायित्वों को क्यों निभाते थे? पूरे समाज को एक साथ बांध कर रखने वाली वो मुख्य शक्ति क्या थी?
क्या थी
वो शक्ति? थी सम्मान।
सम्मान मतलब सुनने में तो ये एक बहुत ही साधारण सा नैतिक शब्द लगता है, जैसे किसी का आदर करना, लेकिन स्रोत सामग्री को देखकर ऐसा लगता है कि प्राचीन दुनिया में ये किसी करेंसी या असली मुद्रा की तरह काम करता था।
हाँ, एक तरह से ये उनकी करेंसी ही थी।
यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य का जिक्र है, जहाँ रोमन दार्शनिक सेनेका,
जो सम्राट नीरो के शिक्षक भी थे,
हाँ वही, उनका मानना था कि कोई भी चीज सिर्फ इसलिए मूल्यवान है क्योंकि वो सम्मानजनक है। उनके लिए दुनिया की हर चीज का मोल इसी बात से तय होता था।
यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि प्राचीन दुनिया में सम्मान की कीमत इंसान की अपनी शारीरिक सुरक्षा से भी ज्यादा थी।
रेटोरिका एड हेरेनियम नाम की एक प्राचीन लैटिन किताब और महान दार्शनिक अरस्तु दोनों ही इस बात पर बहुत जोर देते हैं।
मतलब जान से भी ज्यादा?
हाँ, अगर किसी व्यक्ति को एक तरफ अपनी जान की सुरक्षा और दूसरी तरफ अपने सम्मान के बीच चुनाव करना हो, तो प्राचीन दुनिया में हमेशा सम्मान की जीत होती थी।
लेकिन ऐसा क्यों? ये थोड़ा अजीब लगता है। कोई भी सामान्य इंसान अपनी जान से ज्यादा अपनी इज्जत को क्यों चुनेगा? मतलब जान है तो जहान है ना। बात यह है कि उस समय कोई पुलिस फोर्स नहीं थी, कोई मानवाधिकार आयोग नहीं था। एक इंसान की सुरक्षा पूरी तरह से उसके समुदाय पर निर्भर करती थी।
अच्छा,
अगर कोई व्यक्ति अपना सम्मान खो देता या समाज की नजरों में कायर साबित हो जाता, तो समुदाय उससे नाता तोड़ लेता, उसे कोई व्यापार नहीं देता, उसके परिवार से कोई रिश्ता नहीं जोड़ता,
तो वो एक तरह से समाज से कट जाता था।
हाँ, वो सामाजिक रूप से मृत हो जाता था। और उस जमाने में सामाजिक मौत का सीधा मतलब था बहुत जल्द होने वाली शारीरिक मौत। इसलिए सम्मान सिर्फ अहंकार की बात नहीं थी, ये उनके जिंदा रहने की बुनियादी शर्त थी।
बाप रे, ये व्याख्या तो वाकई बहुत सी चीजों को स्पष्ट कर देती है। सम्मान कोई विलासिता नहीं, बल्कि एक जीवन रक्षक जैकेट था।
बिल्कुल।
तो सवाल ये उठता है कि ये सम्मान मिलता कैसे था?
मुख्य रूप से सम्मान दो तरह से मिलता था। पहला था जन्मजात सम्मान, जो किसी को उसके जन्म, उसकी जाति या उसके परिवार के रुतबे से विरासत में मिलता था।
और दूसरा?
दूसरा था अर्जित सम्मान, जिसे व्यक्ति अपने महान कार्यों या समाज के मूल्यों को पूरा करके खुद कमाता था।
और ये सिर्फ एक एहसास नहीं था, है ना? स्रोत में कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो बताते हैं कि इसे दिखाने के तरीके बहुत ही भौतिक और प्रतीकात्मक होते थे।
हाँ बिल्कुल, भौतिक होते थे।
जैसे किसी दावत में मेजबान के दाहिनी ओर बैठना बहुत बड़े सम्मान की बात मानी जाती थी। किसी के सिर पर माला या मुकुट पहनाना उसके सम्मान को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना था।
और इसके बिल्कुल विपरीत, अपमान करने के तरीके भी उतने ही सार्वजनिक होते थे। किसी के चेहरे पर थप्पड़ मारना,
जैसे यीशु के मुकदमे के दौरान हुआ था।
हाँ बिल्कुल वही। वो सिर्फ एक शारीरिक चोट पहुंचाना नहीं था, दर्द से ज्यादा ये व्यक्ति के सामाजिक दर्जे को पूरी तरह मिट्टी में मिलाने की एक सोची समझी प्रक्रिया थी, जिसे स्टेटस डिग्रेडेशन कहते हैं।
मतलब उस इंसान की अब समाज में कोई हैसियत नहीं रही।
सही का। यहाँ तक कि किसी का नाम भी सिर्फ पहचान नहीं था, वो उसके सम्मान का पर्याय था। जब प्राचीन प्रार्थनाओं में कहा जाता था कि तुम्हारा नाम पवित्र माना जाए, तो वो असल में उस नाम के साथ जुड़े सम्मान को स्वीकार करने की बात हो रही थी।
इस पूरी व्यवस्था को देखकर मैं ये सोच रही थी कि सम्मान की इस भूख का इस्तेमाल समाज ने लोगों को नियंत्रित करने के लिए कैसे किया होगा।
बहुत चतुराई से किया था।
मतलब बिना किसी पुलिस या टैक्स सिस्टम के प्राचीन शहर लोगों से बड़े बड़े काम कैसे करवाते थे।
डॉक्टर डिसिल्वा ने कोरंथ शहर के एक अधिकारी का बहुत अच्छा उदाहरण दिया। एरास्टस नाम था उसका। उसने शहर के थिएटर के बाहर अपने खुद के खर्च पर एक बहुत बड़ा पत्थर का फर्श बिछवाया।
अपने खुद के खर्च पर? क्यों?
ताकि उन पत्थरों पर उसका नाम उगेरा जाए और आने वाली सदियों तक लोग उसे याद रखें। ये हमेशा के लिए अमर हो जाने और सम्मान पाने की वो गहरी चाह थी जो समाज के लिए बड़े बड़े काम करवाती थी।
तो ये एक तरह का सोशल प्रेशर और फ्रेम की चाहत थी।
बिल्कुल। और युद्ध के मैदान में भी यही नियम लागू होता था। एथेंस और यहूदिया के लोग युद्ध में बेखौफ होकर अपनी जान देने को तैयार रहते थे,
क्योंकि समाज ने यह तय कर दिया था कि कायरता सबसे बड़ा कलंक है।
हाँ, और वीरता सबसे बड़ा सम्मान।
लेकिन क्या सम्मान की ये परिभाषा पुरुषों और महिलाओं के लिए बिल्कुल एक जैसी थी? मुझे नहीं लगता ऐसा होगा।
आप बिल्कुल सही सोच रही हैं, ऐसा नहीं था। लिंग भेद यहाँ बहुत बड़ी भूमिका निभाता था।
कैसे?
पुरुषों का सम्मान सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा में था, घर से बाहर जाना, दूसरों से लड़ना और अपना रुतबा बढ़ाना। लेकिन महिलाओं के मामले में ये नियम एकदम उल्टा था। महिलाओं का सम्मान घर की चार दीवारी के भीतर रहने, विनम्रता दिखाने और सबसे जरूरी बात, उनके घर के पुरुषों के सम्मान को बनाए रखने से जुड़ा था।
तो महिलाओं के लिए घर के अंदर रहना ही सम्मान की बात थी, लेकिन स्रोत में कुछ ऐसे अपवाद भी बताए गए हैं जहां महिलाओं ने मर्दाना साहस दिखाया।
हाँ, जैसे जूडिथ की कहानी या फोर्थ मेकाबिस की वो माँ जिसने अपने 7 बेटों को शहादत के लिए प्रेरित किया। इन महिलाओं ने संकट के समय अपने समूह के लिए वो अतुलनीय साहस दिखाया जिसकी उम्मीद उस समय सिर्फ पुरुषों से की जाती थी। ऐसे अपवादों में उन्हें अपमानित करने के बजाय सम्मानित किया गया।
ये सब सुनकर लगता है कि ये पूरी व्यवस्था तभी सुचारू रूप से काम कर सकती है जब पूरा समाज एक ही बात पर सहमत हो।
बिल्कुल।
और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। क्या होगा जब दो अलग अलग समूह एक ही शहर में हो और दोनों के सम्मान की परिभाषा बिल्कुल उल्टी हो?
ये तो एक बहुत बड़ा टकराव होगा।
हाँ, श्रोत में बताया गया है कि एक यूनानी शहर में एक यहूदी होने का क्या मतलब था। यहूदियों के लिए उनके सम्मान का पैमाना था मूर्तियां न पूजना, सुअर का मांस न खाना, खतना करना और सबत के दिन आराम करना।
लेकिन बहुसंख्यक यूनानियों की नजर में यही सब बातें बेहद शर्मनाक थीं।
अच्छा।
हाँ, यूनानी लोग यहूदियों को नास्तिक कहते थे क्योंकि वे यूनानियों के देवी देवताओं को नहीं मानते थे। खतने को वे शरीर को बिगाड़ने वाला कृत्य मानते थे। सप्त की वजह से उन्हें आलसी कहा जाता था और सुअर का मांस ना खाने पर यूनानियों का तर्क था कि यह प्रकृति के स्वादिष्ट उपहार का अपमान है।
मतलब दोनों के विचार एकदम विपरीत थे। ये तो ऐसा हो गया जैसे आप एक ऐसे स्कूल में हो जहां हर कोई आपका मजाक उड़ा रहा हो। ऐसे में आपको अपने अंदर के एक बहुत मजबूत सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है।
बिल्कुल। और इससे एक जरूरी सवाल पैदा होता है, एक अल्पसंख्यक समूह भारी दबाव और अपमान के बीच अपने लोगों को समूह छोड़ने से कैसे रोकता है?
हाँ, वे अपने अस्तित्व को कैसे बचाते हैं?
इसके लिए प्राचीन अल्पसंख्यक समूहों ने 3 रणनीतियां अपनाई। सबसे पहली थी प्रतिष्ठा के न्यायालय को ही बदल देना।
मतलब ये तय करना कि असल में जज कौन है।
बेन सिराहा का उदाहरण यहाँ बहुत सटीक है। वे अपने समूह को सिखाते हैं कि दौलत या पद असली सम्मान नहीं है। असली सम्मान है ईश्वर का डर। इंसान सिर्फ बाहरी चीजें देखता है, लेकिन ईश्वर की आंखें सूरज से 10,000 गुना ज्यादा तेज हैं।
अरे वाह, तो मतलब बहुसंख्यक समाज क्या सोचता है ये मायने नहीं रखता।
बिल्कुल नहीं। दूसरी रणनीति थी बाहरी लोगों की राय को पूरी तरह से खारिज कर देना। विजडम ऑफ सोलोमन का हवाला देते हुए बताया गया है कि जो लोग बेजान मूर्तियों की पूजा करते हैं उनकी राय का कोई मूल्य ही नहीं हो सकता, वे अज्ञानी हैं।
तो उनके तानों का बुरा मानने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब बात शारीरिक हिंसा और यातना तक पहुंच जाए तब क्या?
और यहीं पर तीसरी रणनीति आती है। ये रणनीति थी अपमान को ही सम्मान में बदल देना। इसके लिए उन्होंने एथलेटिक रूपकों का सहारा लिया।
वही फोर्थ मैकाबेज की माँ वाला उदाहरण।
हाँ, बाहरी दुनिया सोच रही थी कि वे उन्हें यातना देकर अपमानित कर रहे हैं, लेकिन अल्पसंख्यक समूह ने इसे एक ईश्वरीय एथलेटिक प्रतियोगिता मान लिया
जहाँ ईश्वर जज है।
बिल्कुल। और शहादत कोई मौत नहीं बल्कि अमरता और असली जीत का मेडल है।
तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? सम्मान सिर्फ सिद्धांतों की बात नहीं थी, ये खेल था, है ना?
हाँ, एक ऐसा खेल जहाँ एक की जीत का मतलब दूसरे की हार था। ये एक सीमित संसाधन था।
कोई ऐसा ऐतिहासिक वाक्या है जो इसे साबित करता हो?
ल्यूक अध्याय 13 की कहानी बहुत सटीक है, जहाँ यीशु सप्त के दिन एक महिला को ठीक करते हैं जो 18 साल से बीमार थी।
सप्त के दिन जब काम करने की मनाही थी।
बिल्कुल। यीशु ठीक करके सार्वजनिक रूप से सम्मान का दावा करते हैं। ये एक चुनौती थी। जवाब में प्रार्थनालय का नेता भीड़ से कहता है कि इलाज के लिए बाकी 6 दिन आओ। ये एक परोक्ष चुनौती थी।
और यीशु का पलटवार क्या था?
यीशु ने कहा कि तुम सप्त के दिन अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए खोलते हो, तो क्या इस महिला को शैतान के बंधन से नहीं खोलना चाहिए?
बाप रे, ये तो बहुत मजबूत तर्क था। लेकिन फैसला किसने किया कि कौन जीता?
प्राचीन दुनिया में फैसला दोनों बहस करने वाले नहीं बल्कि भीड़ करती थी।
अच्छा।
और भीड़ ने यीशु के काम पर खुशी मनाई और विरोधियों को शर्मिंदा किया। यीशु ने ये सम्मान की जंग जीत ली।
तो अगर हम आज की इस चर्चा को समेटें तो ये साफ होता है कि पहली सदी की दुनिया को समझने के लिए हमें अपनी आधुनिक व्यक्तिवादी सोच को किनारे रखकर उस प्राचीन सम्मान और अपमान के चश्मे को पहनना होगा।
इसके बिना हम इतिहास को कभी नहीं समझ सकते।
बिल्कुल। और अंत में मैं एक गहरा विचार छोड़ना चाहूंगी जो स्रोत सामग्री पर आधारित है।
जरूर बताइए।
एफेसुस जैसे विशाल शहर में शुरुआती ईसाई मुश्किल से 50 लोगों का एक छोटा सा समूह थे। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया में जो पूरी तरह से सार्वजनिक सम्मान और दिखावे पर चलती थी, वहां एक ऐसे छोटे और कलंकित समूह ने बहुसंख्यक समाज के लोगों को अपने साथ कैसे जोड़ा होगा, ये जानते हुए भी कि समूह में शामिल होने का मतलब था अपना सामाजिक सम्मान तुरंत खो देना, एक तरह का सोशल सुसाइड।
ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है।
हाँ, तो इस गहरे अध्ययन में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस विचार पर खुद आगे सोचिएगा। मिलेंगे अगली विस्तृत चर्चा में।